एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सिखाती है कि अपने आइडियाज को यादगार कैसे बनाएं। किताब का नाम है मेड टू स्टिक, व्हाई सम आइडियाज सर्वाइव एंड अदर्स डाई, और लेखक है चिप हीथ और डैन हीथ।
हाँ, और सवाल बड़ा सीधा सा है पर है बहुत गहरा। क्यों कुछ बातें हमारे दिमाग में एकदम चिपक सी जाती हैं और कुछ सुनते ही मतलब हवा हो जाती है?
बिल्कुल।
और आज के जमाने में तो ये और भी जरूरी हो गया है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है चारों तरफ, है ना?
सही कहा, एक समंदर है पूरा। तो ऐसे में अपनी बात, अपना कोई आइडिया दूसरों तक सही से पहुंचाना और ये पक्का करना कि उन्हें याद भी रहे, वो एक असली चुनौती है।
हाँ।
और ये किताब सिर्फ मतलब बिजनेस या मार्केटिंग के लोगों के लिए नहीं है, ये तो हर उस इंसान के काम की है जो चाहता है कि उसकी बात का वजन हो, लोग सुने, समझें और हाँ, याद रखें।
हाँ, ये एक तरह से हमें वो चाबी देती है जिससे आइडियाज को स्टिक यानी चिपकने वाला बनाया जा सके।
बिल्कुल। और देखो, इसके पीछे भी कमाल की जोड़ी है, दो भाई चिप हीथ और डैन हीथ।
अच्छा।
हाँ, और मजे की बात यह है कि दोनों की फील्ड्स अलग हैं, इससे किताब में ना एक गजब का बैलेंस आता है।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है इनके बारे में। चिप हीथ वो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं और उनका बैकग्राउंड साइकोलॉजी में है।
हाँ,
वो रिसर्च करते हैं कि क्यों कुछ कहानियां, जैसे वो शहरी अफवाहें होती हैं या कंपनियों की स्ट्रेटजीज, वो इतनी असरदार कैसे हो जाती हैं, तो उनके पास वो एकेडमिक वाली गहराई है।
सही। और दूसरे भाई हैं डैन हीथ, वो एक कंसल्टेंट हैं, स्पीकर हैं और पहले हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में रिसर्चर भी थे।
अच्छा।
उनका फोकस ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पर है, मतलब आइडियाज को जमीन पर कैसे उतारा जाए, उन्हें असल दुनिया में काम का कैसे बनाया जाए। उन्होंने एक एजुकेशन कंपनी थिंकवेल भी शुरू की थी, तो वो ये पक्का करते हैं कि थ्योरी सिर्फ थ्योरी ना रहे, काम भी आए।
तो ये तो कमाल की जोड़ी हुई, एक तरफ रिसर्च की पकड़, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल अनुभव।
बिल्कुल। और ये लोग ना मुश्किल साइकोलॉजिकल बातों को भी बड़े आसान तरीके से, दिलचस्प अंदाज में, कहानियों के जरिए समझाते हैं, यही इनकी खासियत है।
इसीलिए इनकी बात में दम लगता है। ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते कि भाई अच्छे आइडिया क्यों फेल हो जाते हैं, बल्कि उसका एक साफ सुथरा, सबूतों पर आधारित और हाँ, इस्तेमाल करने लायक हल भी देते हैं।
सही कहा।
तो ये जो किताब है मेड टू स्टिक, इसे हम कह सकते हैं कि ये असरदार कम्युनिकेशन की एक तरह की गाइड है।
हाँ, एक मास्टर क्लास कह सकते हैं।
इसका मकसद बिल्कुल साफ है, हमें ऐसे तरीके सिखाना जिनसे हम ऐसे संदेश बना सकें जो लोगों को याद रहें, असर करें और शायद उन्हें कुछ करने के लिए उकसाएं भी।
और सबसे बड़ी बात जो ये किताब कहती है वो ये कि आइडियाज को चिपचिपा बनाना, मतलब यादगार बनाना, कोई पैदाइशी हुनर या कोई जादू नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या है?
ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे सीखा जा सकता है और सिस्टमैटिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।
वाह, ये तो बड़ी उम्मीद जगाने वाली बात है,
है ना? और ये उस पहेली को भी सुलझाने की कोशिश करती है कि भाई ऐसा क्यों होता है कि कुछ अफवाहें, मतलब बिल्कुल झूठी कहानियां, जैसे वो किडनी चुराने वाले गैंग की कहानी सुनी होगी सबने।
हाँ हाँ, सुनी है।
वो तो जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं, पर जो जरूरी बातें हैं, सच्ची जानकारी है, वो लोगों तक पहुंचाने में पसीने छूट जाते हैं। क्यों?
ये तो सोचने वाली बात है। तो लेखक क्या कहते हैं इस बारे में?
लेखक इसका एक बड़ा कारण मानते हैं ज्ञान के अभिशाप को, कर्स ऑफ नॉलेज।
ज्ञान का अभिशाप, सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लग रहा है, मतलब क्या हुआ इसका?
देखो, आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जब हम कोई चीज बहुत अच्छे से जान जाते हैं ना,
हाँ,
तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि किसी ऐसे इंसान के लिए ये कैसा होगा जो उस चीज को नहीं जानता।
अच्छा, मतलब हम मान लेते हैं कि जो हमें पता है वो तो सबको पता होगा या आसानी से समझ आई जाएगा।
बिल्कुल। और इसी चक्कर में हम अपनी बात को आसान और साफ तरीके से नहीं कह पाते, जैसे कोई डॉक्टर बहुत मुश्किल मेडिकल टर्म्स यूज करे मरीज के सामने।
हाँ हाँ, या कोई इंजीनियर बहुत टेक्निकल भाषा में बात करे किसी नॉन टेक्निकल आदमी से। समझ गया, हम अपने ही ज्ञान के जाल में उलझ जाते हैं।
एग्जैक्टली। तो ये किताब हमें इसी जाल से, इसी अभिशाप से निकलने का रास्ता दिखाती है।
और वो रास्ता क्या है?
वो एक फ्रेमवर्क देती है, एक फॉर्मूला समझ लो।
ओके।
जिसे उन्होंने नाम दिया है SUCCS।
SUCCS स्पेलिंग क्या है इसकी?
SUCCSS। ये छह सिद्धांतों का पहला अक्षर है, सिंपल यानी सरल, अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित, कॉन्क्रीट यानी ठोस, क्रेडिबल यानी विश्वसनीय, इमोशनल यानी भावनात्मक और एस यानी स्टोरीज, कहानियां।
अच्छा, SUCCSS, ये तो याद रखने में भी आसान है।
हाँ, और किताब इन्हीं छह चाबियों को खोलती है, वो भी बड़े मजेदार किस्सों, केस स्टडीज और उदाहरणों के साथ।
ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं, एक एक करके समझते हैं इन सिद्धांतों को। पहला है एस, सिंपल यानी सरल।
हाँ, सिंपल। अब देखो, सरल का मतलब ये नहीं कि बात को बिल्कुल हल्का कर दो या बेवकूफी भरा बना दो।
नहीं नहीं, वो मतलब नहीं।
इसका असली मतलब है अपने आइडिया के कोर तक पहुंचना, उसका जो असली सार है, निचोड़ है, उसे पकड़ना।
अच्छा, मतलब जैसे फालतू की डिटेल हटाकर सिर्फ सबसे जरूरी, सबसे मुख्य बात पर फोकस करना।
बिल्कुल, और इसके लिए हिम्मत चाहिए। निर्ममता से प्राथमिकता तय करनी पड़ती है। आपको पहचानना होगा कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। लेखक कहते हैं, अगर आप एक साथ तीन बातें कह रहे हैं तो समझ लीजिए आप कुछ भी नहीं कह रहे।
वाह, ये तो बड़ी पते की बात कही।
सोचो, सेना में होता है कमांडर का इरादा, मिशन का एक बिल्कुल साफ सीधा लक्ष्य, ताकि हर सिपाही को पता हो कि आखिर करना क्या है, हासिल क्या करना है।
हाँ बिल्कुल, कोई कंफ्यूजन नहीं।
या फिर वो साउथ वेस्ट एयरलाइंस का उदाहरण, उनका मूल मंत्र क्या था? हम सबसे सस्ती एयरलाइन है, द लो फेयर एयरलाइन। बस एक बात,
और इसी एक बात ने उनके सारे फैसले तय किए होंगे फिर।
एग्जैक्टली, जैसे फ्लाइट में खाना ना देना या सिर्फ एक ही तरह के जहाज इस्तेमाल करना ताकि मेंटेनेंस आसान हो, सब कुछ उसी एक सरल मंत्र के इर्द गिर्द। ये है सरलता की ताकत।
कमाल है। ठीक है, तो ये हुआ सिंपल। अगला है यू, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। इसका क्या मतलब है?
लोगों को सरप्राइज देना, चौंकाना।
हाँ,
कुछ कुछ वैसा ही। देखो, हमारा ध्यान खींचने और उसे बनाए रखने के लिए ना, कभी कभी लोगों की उम्मीदों को तोड़ना पड़ता है।
अच्छा, कैसे?
हमारा दिमाग है ना, वो पैटर्न ढूंढता रहता है, और जैसे ही कोई पैटर्न टूटता है, हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं।
हाँ, ये तो है।
सोचो, फ्लाइट अटेंडेंट की वो सुरक्षा घोषणा कितनी बोरिंग होती है आमतौर पर।
हाँ यार, कोई सुनता भी नहीं।
पर अगर वही अटेंडेंट उसे थोड़े मजाकिया अंदाज में कुछ हटके सुनाए तो सब कान लगाकर सुनेंगे।
हाँ,
क्योंकि वो अप्रत्याशित है।
हाँ, ये बात तो है। इसमें वो जिज्ञासा का गैप वाली थ्योरी भी फिट होती है क्या?
हाँ।
मतलब जब हमें लगता है कि अरे हमें ये पता नहीं है, तो जानने की इच्छा होती है।
बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा। एक अप्रत्याशित शुरुआत या कोई चौंकाने वाला तथ्य हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा कर देता है, अरे ये क्या हो रहा है या इसका मतलब क्या है, और हम जवाब जानने के लिए रुक जाते हैं। किताब में पत्रकारिता की एक प्रोफेसर नोरा एफ्रॉन का किस्सा है। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को एक प्रेस रिलीज दी और कहा, इसकी लीड लिखो, मतलब मेन हेडलाइन।
ठीक है।
सबने वो ही घिसी पीटी सामान्य बातें लिखी जो रिलीज में थी। फिर एफ्रॉन ने अपनी लीड बताई, गुरुवार को स्कूल बंद रहेगा।
अरे, ये कहां से आया?
ये उस प्रेस रिलीज की सबसे जरूरी पर छुपी हुई बात थी, बिल्कुल अप्रत्याशित। और इसने स्टूडेंट्स को सिखाया कि खबर का असली मर्म, असली मुद्दा कैसे पहचानना है, जो शायद ऊपर ऊपर ना दिख रहा हो।
वाह, क्या तरीका है सिखाने का, बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं तीसरे पर, कंक्रीट, ठोस। इसका क्या मतलब? विचारों को सीमेंट जैसा बना दे?
नहीं नहीं, सीमेंट जैसा नहीं। ठोस का मतलब है विचारों को हवा हवाई, एब्स्ट्रैक्ट भाषा में नहीं, बल्कि ऐसी भाषा में बताना जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सकें, जैसे हम देख सकें, सुन सकें, छू सकें, चख सकें।
अच्छा, मतलब अमूर्त नहीं, मूर्त।
हाँ बिल्कुल, हमारा दिमाग है ना, वो बड़ी बड़ी फिलॉसफी वाली बातें, जैसे ग्राहक संतुष्टि को ऑप्टिमाइज करना या सिनर्जी बढ़ाना, ऐसी चीजों को याद नहीं रख पाता।
सही बात है, ये सब कॉरपोरेट बातें लगती हैं बस।
लेकिन ठोस चीजें याद रहती हैं, जैसे वो ईसप की कहानियां हैं, लोमड़ी और खट्टे अंगूर।
हाँ, वो तो बचपन से याद है।
क्यों याद है? क्योंकि वो ईर्ष्या जैसी एक अमूर्त भावना को एक ठोस कहानी, एक ठोस इमेज, खट्टे अंगूरों के लिए कूदती लोमड़ी से जोड़ती है।
सही कहा, ठोस चीजें दिमाग में वेलक्रो की तरह चिपक जाती हैं।
बिल्कुल। किताब में एक और जबरदस्त उदाहरण है। अमेरिका में एक संस्था है CSPI, सेंटर फॉर साइंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट। उन्होंने मूवी थिएटर में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर एक कैंपेन चलाया था।
अच्छा, पॉपकॉर्न पर?
हाँ, अब वो ये भी कह सकते थे कि एक मीडियम पॉपकॉर्न में 37 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है, पर ज्यादातर लोगों के लिए 37 ग्राम कितना होता है ये समझना मुश्किल है।
हाँ, ये तो बस एक नंबर है।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे ठोस बनाया। उन्होंने कहा कि एक मीडियम पॉपकॉर्न बैग में उतनी धमनियां ब्लॉक करने वाली चर्बी होती है जितनी एक बेकन अंडे का नाश्ता, दोपहर का बिग मैक और फ्राइज, और रात के स्टेक डिनर को मिलाकर भी ज्यादा होती है।
बाप रे, ये तो सुनकर ही दिल बैठ जाए। ये वाकई ठोस है और डरावना भी
है ना। यही है ठोस बनाने की ताकत, बात सीधी दिमाग में लगती है।
समझ गया। अब आते हैं अगले सी पर। सी क्रेडिबल, विश्वसनीय। ये तो जरूरी है ही। अगर आइडिया भरोसे लायक नहीं होगा तो टिकेगा कैसे?
हाँ ये तो है, पर सवाल ये है कि विश्वसनीयता आती कहाँ से है? क्या सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की बातों पर ही भरोसा होता है?
आमतौर पर तो ऐसा ही सोचते हैं।
किताब कहती है जरूरी नहीं। कभी कभी एंटी अथॉरिटीज ज्यादा भरोसेमंद लगते हैं।
एंटी अथॉरिटीज मतलब?
मतलब ऐसे लोग जिनका अपना अनुभव उन्हें उस चीज के खिलाफ खड़ा करता है। जैसे मान लो कोई चेन स्मोकर है जिसे फेफड़ों का कैंसर हो गया है। अब वो अगर स्मोकिंग के खिलाफ बोलेगा तो उसकी बात में ज्यादा वजन होगा, है ना?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भुगत चुका है।
और छोटी छोटी ठोस डिटेल्स भी कहानी को ज्यादा विश्वसनीय बनाती हैं। अगर कोई कहे मैंने कल रात एक लाल रंग की तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार देखी जिसमें पीछे स्पॉइलर लगा था, तो वो ज्यादा भरोसेमंद लगता है बजाय सिर्फ ये कहने के कि मैंने कार देखी।
डिटेल से बात में जान आ जाती है।
बिल्कुल, और आंकड़ों का भी यही है, उन्हें इंसानी पैमाने पर लाना जरूरी है। लाखों करोड़ों की बातें समझ नहीं आती।
हाँ वो बस नंबर रह जाते हैं।
किताब में सिनात्रा टेस्ट का जिक्र है, मतलब एक ऐसा जबरदस्त उदाहरण दो कि अगर लोग उस पर यकीन कर लें तो समझो आपकी बाकी बातों पर भी कर लेंगे। जैसे कोई केटरिंग कंपनी कहे हमने राष्ट्रपति भवन में शादी की केटरिंग की है।
अच्छा, मतलब एक बड़ी उपलब्धि बता दो तो बाकी सब अपने आप विश्वसनीय लगने लगता है।
हाँ, और वो स्मोकिंग वाला उदाहरण याद है? एक एंटी स्मोकिंग कैंपेन में कुछ किशोरों ने एक बड़ी तंबाकू कंपनी के हेडक्वार्टर के बाहर 1825 बॉडी बैग रख दिए थे।
1825 क्यों?
ये दिखाने के लिए कि अमेरिका में रोज 1825 किशोर स्मोकिंग शुरू करते हैं। वो आंकड़ा जो शायद ऐसे किसी को याद न रहता, उन बॉडी बैग्स ने उसे भयानक रूप से ठोस और विश्वसनीय बना दिया।
उफ, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, बहुत असरदार। ठीक है, अब पांचवा सिद्धांत ई, इमोशनल, मतलब विचारों में भावनाएं घोलना।
हाँ, क्योंकि सिर्फ दिमाग से समझना काफी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके आइडिया पर अमल करें तो जरूरी है कि वो उससे दिली तौर पर जुड़ें। उन्हें उसकी परवाह होनी चाहिए।
बात तो सही है, एक्शन के लिए इमोशन जरूरी है।
बिल्कुल, हमें लोगों को कुछ महसूस कराना होगा।
और किताब कहती है कि हम बड़े बड़े आंकड़ों से उतना नहीं जुड़ते जितना किसी एक अकेले इंसान की कहानी से। वो एक की शक्ति वाला कॉन्सेप्ट।
एग्जैक्टली, हमारा दिमाग ऐसे ही बनाए। हम लाखों लोगों की तकलीफ के आंकड़े सुनकर शायद सुन हो जाएं, पर किसी एक इंसान के दर्द की कहानी हमें हिला देती है।
हाँ ये बात तो मैंने भी महसूस की है।
इसीलिए जो चैरिटी संस्थाएं होती हैं, वो लाखों भूखे बच्चों के आंकड़े गिनाने के बजाय अक्सर किसी एक बच्चे की कहानी सामने रखती हैं। जैसे सेव द चिल्ड्रन की रोकिया की कहानी। मदर टेरेसा का वो कोट याद है, अगर मैं भीड़ को देखूंगी तो शायद कभी कुछ ना करूं, अगर मैं एक को देखूंगी तो जरूर करूंगी।
कितनी गहरी बात है।
इसके अलावा लोगों के अपने स्वार्थ, मेरे लिए इसमें क्या है, या उनकी पहचान से अपील करना भी भावनात्मक जुड़ाव बनाता है।
हा?
जैसे वो टेक्सास का एंटी लिटरिंग कैंपेन था, डोंट मेस विद टेक्सास। उसने टेक्सास वालों की पहचान उनके गर्व से अपील की।
हाँ वो बहुत कामयाब हुआ था। ठीक है, अब आखिरी है
स्टोरीज,
कहानियां।
नहीं, ये तो हम सबको पसंद है
और जरूरी भी है।
कहानियां चिपचिपे आइडियाज की सबसे बेहतरीन सवारी हैं। लेखक कहते हैं कि कहानियां हमारे दिमाग के लिए फ्लाइट सिमुलेटर की तरह काम करती हैं।
फ्लाइट सिमुलेटर मतलब?
जैसे पायलट असली जहाज उड़ाने से पहले सिमुलेटर पर प्रैक्टिस करता है ना, अलग अलग मुश्किल हालात में कैसे रिएक्ट करना है ये सीखता है।
हाँ।
वैसे ही कहानियां हमें मानसिक रूप से तैयार करती हैं। वो हमें बताती हैं कि अलग अलग सिचुएशन में लोग कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, कैसे मुश्किलों से निपटते हैं। ये हमें सिखाती हैं और प्रेरणा भी देती हैं।
अच्छा, मतलब कहानियां सिर्फ टाइम पास नहीं है बल्कि वो हमें असल जिंदगी के लिए तैयार करती हैं। जैसे वो जेरेड की कहानी थी जिसने सबवे सैंडविच खाकर वजन कम किया था।
बिल्कुल, वो कहानी कितने लोगों के लिए वजन कम करने की प्रेरणा बनी। कहानियां हमें संदर्भ देती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाती हैं और एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती हैं। किताब में तीन बेसिक कहानी प्लॉट भी बताए हैं। चुनौती प्लॉट जैसे डेविड और गोलियात, मुश्किलों पर जीत, कनेक्शन प्लॉट लोगों के बीच रिश्ते बनना जैसे वो कोक का एड था, और क्रिएटिविटी प्लॉट किसी नई चीज का आविष्कार जैसे पोस्ट इट नोट्स।
अच्छा,
एक अस्पताल का उदाहरण भी है जहां एक मरीज की मौत की भावनात्मक कहानी जो एक रोकी जा सकने वाली गलती से हुई थी, सुनाकर डॉक्टरों और नर्सों को मेडिकल गलतियों के प्रति ज्यादा सावधान रहने के लिए प्रेरित किया। कहानी ने वो काम किया जो शायद नियम या आंकड़े नहीं कर पाते।
कमाल है। तो ये थे सक्सेस के 6 सिद्धांत। अगर इन सबको एक साथ देखें तो कुछ बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं इस किताब से।
हाँ, कई बड़े टेकअवेज हैं। पहला तो मेरे ख्याल से वही है, ज्ञान का अभिशाप। ये समझना कि कम्युनिकेशन में हमारी सबसे बड़ी बाधा अक्सर हम खुद होते हैं।
सही कहा। अपनी जानकारी में इतना डूब जाना कि सामने वाले की जरूरत या समझ का अंदाजा ही न लगा पाना, ये बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल। और दूसरा बड़ा सबक ये है कि भाई, यादगार आइडिया बनाना कोई जादू टोना या रहस्यमयी कला नहीं है।
हाँ, ये एक क्राफ्ट है, एक हुनर है,
जिसके सिद्धांत हैं, जैसे सक्सेस। और अच्छी बात यह है कि इन्हें कोई भी सीख सकता है और बेहतर कम्युनिकेटर बन सकता है।
और वो सरलता वाली बात मुझे बहुत जरूरी लगी, कम ही ज्यादा है। इतने शोर में अगर अपनी आवाज सुनानी है तो आपको अपनी बात को उसके एसेंस तक, उसके कोर तक लाना ही होगा, फालतू चीजें हटानी होंगी।
सही। और एक और अहम बात, आंकड़ों और अमूर्त बातों से ज्यादा इंसानी पैमाने की चीजें काम करती हैं।
हाँ, वो ठोस बनाने वाला सिद्धांत।
हाँ, ठोस तस्वीरें, ऐसी तुलनाएं जिनसे लोग रिलेट कर सकें, व्यक्तिगत कहानियां। हमारा दिमाग इसी भाषा को बेहतर समझता है और याद रखता है। वो पॉपकॉर्न वाला उदाहरण भूल नहीं सकता कोई।
बिल्कुल। और ये भी कि भावनाएं ही एक्शन का इंजन है। तर्क शायद समझने के लिए जरूरी हो, पर कुछ करने के लिए लोगों को कुछ महसूस करना जरूरी है।
हाँ, चाहे वो उनका अपना फायदा हो, उनकी पहचान हो, या फिर किसी और के लिए हमदर्दी। इमोशन ट्रिगर करता है एक्शन को।
और अंत में कहानियां, वो सिर्फ उदाहरण या मनोरंजन नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सिखाने, प्रेरित करने और हमें मानसिक रूप से तैयार करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। किताब में कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जो एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं, निचोड़ हैं जैसे पूरे सिद्धांत का।
हाँ है। जैसे पहली तो वही ज्ञान के अभिशाप वाली। एक बार जब हम कुछ जान जाते हैं तो ये कल्पना करना मुश्किल होता है कि उसे न जानना कैसा था। ये लाइन बार बार याद दिलाती है कि सुनने वाले की जूते में पैर डालकर सोचना कितना जरूरी है।
बिल्कुल। और सरलता पर वो लाइन भी बहुत अच्छी है। सरलता का मतलब सार निकालना है, न कि बातों को हल्का करना। एक वाक्य का बयान इतना गहरा हो सकता है कि व्यक्ति उसे समझने में पूरी जिंदगी लगा दे। ये बताती है कि असली सरलता चिचलेपन से नहीं, गहराई से आती है।
सही कहा। और मदर टेरेसा वाली बात, अगर मैं जनसमूह को देखूंगी तो मैं कभी कार्य नहीं करूंगी, अगर मैं एक को देखूंगी तो मैं करूंगी। ये व्यक्तिगत जुड़ाव की ताकत को दिखाती है। आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, पर इंसान हमें महसूस कराते हैं।
हाँ, और मेरी पसंदीदा तो वो है, कहानी मस्तिष्क के लिए एक उड़ान सिमुलेटर है। कितनी खूबसूरती से समझा देती है कि कहानियां क्यों इतनी असरदार होती हैं। वो हमें असल दुनिया के लिए प्रैक्टिस कराती हैं।
बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताओ कि इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में।
अरे, हर जगह। सोचो, कोई CEO है, उसे अपनी कंपनी की कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी समझानी है, वो उसे एक सरल कमांडर के इरादे की तरह पेश कर सकता है।
हाँ, या कोई टीचर है, उसे कोई बोरिंग सा चैप्टर पढ़ाना है, वो उसे अप्रत्याशित तरीके से शुरू कर सकती है, ठोस उदाहरण दे सकती है, कहानियां सुना सकती है, लेसन यादगार बन जाएगा।
बिल्कुल। या फिर हेल्थ कैंपेन में, जैसे वो पॉपकॉर्न वाला था, ठोस जानकारी देना, या फिर एक की शक्ति का इस्तेमाल करके भावनात्मक अपील करना।
और अपनी पर्सनल लाइफ में भी तो काम आ सकता है। जैसे किसी दोस्त को कोई सलाह देनी हो तो सिर्फ लेक्चर देने की बजाय अपनी कोई मिलती जुलती कहानी सुनाना शायद ज्यादा असर करे।
हाँ हाँ, बिल्कुल। या नौकरी के इंटरव्यू में अपनी स्किल्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय ठोस उदाहरण देना कि आपने कब, कहाँ, कैसे वो स्किल इस्तेमाल की, वो ज्यादा विश्वसनीय लगेगा।
सही कहा। मतलब ये पूरा फ्रेमवर्क हमें असल में यही सिखाता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या कहना चाहते हैं।
हाँ, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है या उसे कैसे सुनने की जरूरत है, ताकि वो हमारी बात को समझे, याद रखे और हो सके तो परवाह भी करे। तो अगर मुझसे पूछो तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि भाई, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कोई किस्मत की बात नहीं है। ये एक डिजाइन प्रॉब्लम है।
अच्छा, डिजाइन प्रॉब्लम।
हाँ, जैसे सक्सेस जैसे सिद्धांतों का इस्तेमाल करके सॉल्व किया जा सकता है।
इसने कम्युनिकेशन के पूरे रहस्य को जैसे डिकोड कर दिया है, एक तरीका बता दिया है। और मेरे लिए वो ज्ञान के अभिशाप वाली बात, वो एक आहा मोमेंट जैसा था। ये एहसास कि हमारी अपनी जानकारी, हमारी अपनी विशेषज्ञता ही कई बार हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, ये पूरी सोच बदल देता है।
सही कहा।
और SUCCES फ्रेमवर्क इससे निपटने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल ठोस तरीका देता है। ये जानकर तसल्ली होती है कि हमारे पास तरीके हैं अपनी बात को बेहतर ढंग से रखने के।
बिल्कुल, तो कुल मिलाके ये किताब हमें वो औजार वो समझ देती है जिससे हम अपने जरूरी विचारों को, चाहे वो बिजनेस में हो, पढ़ाई में हो या समाज के लिए हो, उन्हें दुनिया के शोर में खोने से बचा सकें।
हाँ, उन्हें सच में चिपचिपा बना सकें ताकि वो टिके, फैले और शायद कुछ अच्छा बदलाव भी लाए।
अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपने अगले जरूरी विचार को स्टिक करवाने के लिए इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे करेंगे।
ये सवाल तो हम सबके लिए है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।